चौथा, कॉलेज की प्राध्यापिकाएं, पृष्ठ संख्या 223। आलोच्य उपन्यासों में हमें कुछ नारी पात्र ऐसे भी मिलते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्राध्यापिकाओं के सामान्य पदों पर कार्य करती हैं। अध्यापन का व्यवसाय वैसे भी एक उम्दा व्यवसाय है। कॉलेज में प्राध्यापिका पद की प्राप्ति के लिए उच्चतम शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। मास्टर डिग्री के उपरांत पीएचडी की उपाधि प्राप्त करनी पड़ती है। दूसरे, उसमें कॉन्स्ट्रेटेड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अतः प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल में अध्यापिका होने की तुलना में इस क्षेत्र में अत्यधिक स्पर्धा है। तथापि स्वाधीनता के उपरांत कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी में प्राध्यापिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। फलतः उपन्यासों में भी कहीं कहीं ऐसे पात्र दृष्टिगत हो जाते हैं। 55 खंभे लाल दीवारी की सुषमा एक तेजस्वी व प्रतिभा संपन्न लड़की है। वह इतिहास में एमए करके लड़कियों के एक कॉलेज में व्याख्याता हो जाती है। तत्सम की वसुधा भी कॉलेज में लेक्चरर है। उसके हिस्से की धूप की मनीषा भी कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कार्य कर रही है। परंतु सुषमा के लिए नौकरी करना उसकी आर्थिक पारिवारिक मजबूरी का एक हिस्सा है। वहाँ वसुधा और मनीषा के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि मनीषा का पति तो एक उद्योगपति है और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न। शैलेश मटियानी कृत आकाश कितना अनंत है। समस्या का एक पहलू यह भी है कि कॉलेज में प्राध्यापिका के पदों पर कार्य करने वाली महिलाएं प्रायः आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होती हैं और अधिकांशतः शौकिया तौर पर नौकरी करती हैं। आपका बंटी की शकुन तो लड़कियों के कॉलेज की आचार्य है। मुझे जान चाहिए कि मिस दिव्या कात्याल अंग्रेजी की प्राध्यापिका है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ वर्षों के लिए शाहजहांपुर के कॉलेज में आती हैं। दिव्या कात्याल एक सुरुचि संपन्न महिला है और नाटकों में उसकी विशेष अभिरुचि है। सौम्य मुद्रा नामक नाटक वह शाहजहांपुर में करवाती है, जिसके कारण उसे वर्षा वशिष्ठ जैसी प्रतिभा संपन्न छात्रा उपलब्ध होती है, जो आगे चलकर अभिनय के उच्चाति उच्च शिखरों को तय करके मोहमय माया नगरी बम्बई में हीरोइन नंबर 1 के स्थान को प्राप्त कर लेती है। 55 खंभे लाल दीवारे की मिस शास्त्री संस्कृत की प्रधानाध्यापिका है। अविवाहित रह जाने के कारण वह और चिड़चिड़ी सी रहती है। पृष्ठ संख्या 224। कॉलेज और हॉस्टलों की लड़कियों से वह लव गॉसिप आदि चटकारे लेकर करती है। वैसाखियों वाली इमारत की मिस जायसवाल भी लड़कियों के कॉलेज में व्याख्याता है। यौन स्वच्छंदता का खुले आम प्रचार करती है। इन उपन्यासों में उक्त महिला पात्रों को प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्य करते हुए चित्रित किया गया है, परंतु मुख्य रूप से उनकी पारिवारिक वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों का ही अधिक चित्रण हुआ है। उनका व्यवसाय पद और उस व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के अनुभवों का चित्रण नहीं हुआ है। पैराग्राफ चेंज। 5वां, आचार्याएं। हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि अनेक महिलाएं शिक्षिकाएं अपनी बुद्धि प्रतिभा के बल पर आचार्या पद को प्राप्त करते हुए उस पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। अतः उपन्यासों में ऐसे पात्रों का आना यथार्थ एवं स्वाभाविक ही कहा जाएगा। शिवानी की उपन्यासों में भैरवी की राजेश्वरी, विवर्त की ललिता, दो सखियाँ की पुष्पा को एक अत्यंत सफल आचार्या कह सकते हैं, क्योंकि उसने कुमाऊं के पहाड़ी प्रदेश में ज्ञान की एक ज्योति सी जला दी। वह अपनी छात्राओं को न केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, अपितु जीवनोपयोगी बातें भी उन्हें सिखाती थी। छात्राएं पाठशाला छोड़ जाने के अनेक वर्षों बाद भी पुष्पा पंत को मिलने के लिए आती है। इससे उनकी छात्र प्रियता का भी परिचय मिलता है। नावे उपन्यास की रेखा निगम बदायूं के एक स्कूल में आचार्य के पद पर कार्य कर रही है। रेवा निगम प्रगतिशील विचारों से संपन्न है। वह समाज द्वारा तिरस्कृत मालती को न केवल अपने सहानुभूति देती है, बल्कि अपने स्कूल में अध्यापिका की नौकरी भी देती है। इस प्रकार इन लेखकों ने आचार्याओं का अपने उपन्यास में बहुत सुंदर और यथार्थपूर्ण वर्णन किया है। पैराग्राफ चेंज। 6वां, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विभाग में काम करने वाली शिक्षिकाएं। पूर्व निर्दिष्ट पृष्ठों में स्पष्ट किया गया है कि अध्यापन का व्यवसाय महिलाओं के लिए सर्वरूपेण उपयुक्त रहता है, अतः अनेक महिलाएं पढ़ लिख कर इस व्यवसाय की ओर आकृष्ट हुई हैं। शिवानी कृत कृष्णकली, तर्पण, भैरवी, विवर्त आदि में इस प्रकार की शिक्षिकाओं का उल्लेख मिलता है। ममता कालिया कृत नरक दर नरक की सीता गुप्ता एक कर्मठ अध्यापिका है। मूलतः वह संस्कृत की अध्यापिका है, परंतु स्कूल में जब हिंदी का विषय दिया जाता है तब भी खूब मनोयोग से नोट्स तैयार करते हुए अपना कार्य बखूबी निभाती है। अपनी इस अध्यापन प्रतिश्रुतता के कारण वह विद्यार्थियों में भी प्रिय है और छात्रगण उसकी इज्जत करते हैं। एक इंच मुस्कान की शकुन संगीत की शिक्षिका है। इसी उपन्यास की रंजना और अमला भी, प्रिया की सौदामिनी ब्रैकेट में दीप्ति खंडेलवाल शिक्षिका है। भगवती शरण मिश्र के उपन्यास सूरज के आने तक की राधा सरकारी योजनाओं के तहत प्रौढ़ शिक्षा का कार्य करती है। रेणुकृत जुलूस उपन्यास में रूपा की माँ सरस्वती को प्राथमिक स्कूल में कार्य करते हुए बताया गया है। इस उपन्यास में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी तथा शिक्षा समिति प्रमुख उप प्रमुख अपने मातहत शिक्षिकाओं का जो यौन शोषण करते हैं उसका भी यथार्थ आकलन रेणु ने किया है। पृष्ठ संख्या 225। कांता भारती कृत रेत की मछली में शिक्षिकाओं का जो यौन शोषण होता है उसे भी संकेतित किया गया है। गुलशेर खान सानी के उपन्यास सांप और सीढ़ी तथा साल वनों के द्वीप में बख्तर के आदिवासियों के जीवन को रूपायित किया गया है। इस प्रदेश में ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, फलतः अनेक आदिवासी युवतियों को स्कूल कॉलेज की शिक्षा देकर उन्हें शिक्षिका के व्यवसाय में लगाया गया है। मोहन राकेश कृत अंतराल की श्यामा भी हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्य कर रही है। यहाँ एक तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है कि सरकारी स्कूल के अतिरिक्त प्रायः खानगी स्कूलों में भी काम करने वाली महिलाओं का आर्थिक शोषण होता है। जितनी राशि पर उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं उतनी तनख्वाह नहीं दी जाती, परंतु आलोच्य उपन्यासों में इस पहलू पर प्रकाश नहीं डाला गया है। सातवां, सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं। नारी शिक्षा के प्रथम दौर में स्त्रियां पढ़ लिख कर प्रायः अध्यापन के व्यवसाय की ओर अग्रसित होने लगी, परंतु बाद में जैसे तैसे शिक्षा का व्याप बढ़ा, महिलाएं सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में क्लर्क, टाइपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, पीए, सेक्रेटरी आदि पदों पर कार्य करने लगी हैं। कृष्णा सोबती कृत यारों के यार और बदी उज्जमा कृत एक चूहे की मौत, निरुपमा सेवती कृत पतझड़ की आवाजें, कांता भारती कृत रेत की मछली, शैलेश मटियानी कृत चंद औरतों का शहर तथा छोटे छोटे पक्षी, रजनी पर्णिकर कृत महानगर की मीता, मोहन राकेश कृत अंधेरे बंद कमरे, निर्मल वर्मा कृत वे दिन, भगवती चरण वर्मा कृत प्रश्न और मरीचिका, लक्ष्मीकांत वर्मा कृत टेरा कोटा, कमलेश्वर कृत डाक बंगला, शशि प्रभा कृत नावे, धर्मेंद्र गुप्त कृत नगर पुत्र हस्ता है आदि उपन्यासों में हमें अनेकानेक नारी पात्र मिल जाते हैं जो कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य करती हैं। ममता कालिया कृत बेघर की संजीवनी विवाह पूर्व ऑफिस में कार्य करती थी और इसीलिए उसके नायक परमजीत को उसके चरित्र पर शंका होती है। बेघर की विजया केलकर भी सरकारी दफ्तर में कार्य करती है। टेरा कोटा की मिस बाटली वाला स्टेनोग्राफर है। आईएएस में निकल जाने के पूर्व टेरा कोटा की मीति मिस्टर खन्ना के फॉर्म में कार्य करती थी और मिस्टर खन्ना की प्राइवेट सेक्रेटरी भी थी। पतझड़ की आवाजें की सुनीला रिसेप्शनिस्ट कम टाइपिस्ट का कार्य करती है। उसके कार्यालय के बॉस उदार और सच्चरित्र वाले व्यक्ति हैं, परंतु उनके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर जो नया बॉस आता है वह लंपट और विलासी प्रकृति का है। सुनीला यदि उसके इशारों पर नाचती तो उसकी पदोन्नति हो सकती थी, परंतु वह उसके लिए तैयार नहीं होती, अतः उसके स्थान पर ऊषा नामक एक युवती को ले लिया जाता है जो योग्यता एवं वरीयता में उभय दृष्टि से सुनीला से कम है, परंतु उसकी चरित्रहीनता और उसकी निर्लज्जता ही उसकी योग्यता के आधार बन जाते हैं। डाक बंगला की ईरा मिस्टर बत्रा की प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर कार्य करती है, परंतु एक प्रकार से वह मिस्टर बत्रा की किप्ट बनकर रह जाती है। छाया मत छूना मन की वसुधा को भी अपनी आर्थिक पारिवारिक व्यवस्था के कारण ऑफिस के ऊपरी अधिकारियों द्वारा यौन शोषण का भोगी होना पड़ता है। यहाँ एक तथ्य ध्यातव्य रहे कि जहाँ चेतना संपन्न नारियाँ आर्थिक मजबूरी में इसके लिए लाचारी का शिकार होती हैं, वहाँ कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ होती हैं जो पुरुष की इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए अपनी स्वार्थ पूर्ति कर लेती हैं। पतझड़ की आवाजी की उषा तथा चिड़ियाघर की मिसेज रिजवी इस प्रकार की स्त्रियों में आती हैं। नावे उपन्यास की मालती मिस्टर सोमजी की सहायिका के रूप में कार्य करती है। वह कई कई दिनों तक सोमजी के साथ विविध स्थानों पर टूर में भी जाती है। मालती के पिता एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं और घर का पूरा निर्वाह मालती की कमाई पर चलता है। घर वालों को केवल मालती की कमाई से मतलब है। वह कहाँ जाती है, क्या करती है, उसके ऑफिस हावर्स और ड्यूटी क्या है, कई कई दिनों तक वह घर से गायब क्यों रहती है, इन बातों से उसके घर वालों को कोई सरोकार नहीं। मालती भी समाज और नैतिकता की परवाह किए बिना अपनी मौज में जिए जा रही थी, परंतु उसका मोह भंग तब होता है जब सोम जी उसे गर्व गिराने के लिए कहते हैं। वे उसे बतौर रखेल तो रखने को तैयार हैं, परंतु विवाहिता का दर्जा उसे नहीं दे सकते। मालती का यह मोह भंग केवल सोम जी से ही नहीं अपने घर परिवार से भी है। जिस परिवार को मालती की कमाई अच्छी लगती थी, वही परिवार अब मालती को ठुकरा देता है। इस प्रकार आलोच्य उपन्यासों में हमें ऐसे कई नारी पात्र मिलते हैं जो सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, कहीं कहीं अपने स्वाभिमान को बरकरार रखकर प्रामाणिकता और निष्ठापूर्वक वे कार्य करते हैं, तो कहीं कहीं उन्हें हमारे पुरुष सत्ताक समाज की विकृतियों का शिकार भी होना पड़ता है।